हरे कृष्ण। तो आज 12 फरवरी है, शिवरात्रि का पवित्र दिवस है। तो हम आज शंकर भगवान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि परम भगवान जो हैं उनके अंदर 64 गुण हैं और वो अमर्याद मात्रा में हैं, और उसमें से जो 4 गुण है वो केवल कृष्ण भगवान के पास है। वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और रूप माधुर्य, बंसी बजाने की कला, लीला करने की कला, उनका प्रेम अपने भक्तों के ऊपर और उनका जो रूप है, इसकी कोई तुलना नहीं है। और इनको छोड़कर जो 60 गुण होते हैं वो सभी विष्णु तत्वों में होते हैं। बाकी के 4 भी होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से, जिस मात्रा में, जिस क्वालिटी में भगवान इन 4 को मतलब सबसे सुंदर तरीके से, सबसे श्रेष्ठ तरीके से वो उसको प्रकट करते हैं, वैसे नहीं कर पाते। लेकिन जो 60 गुण है वो पूर्ण मात्रा में विष्णु तत्व जो है प्रकट करते हैं। और इसमें से जो 55 गुण हैं उसे शिव तत्व कहते हैं, और जीव में उसमें से भी 5 गुण कम हैं। और ब्रह्मा जी में ये 50 गुण जो होते हैं वो परिपूर्ण मात्रा में होते हैं, और जीव के अंदर 50 गुण जो है वो अणुमात्रा में होते हैं, और 55 गुण जो है वो परिपूर्ण मात्रा में शिव जी में होते हैं। इस प्रकार से शिव तत्व बनता है और शंकर भगवान का उदय होता है। शंकर भगवान का अस्तित्व जो है वो एक्चुअली केवल भौतिक जगत में है। जितने ब्रह्मांड महाविष्णु के द्वारा निर्मित हैं वहीं पर शंकर भगवान का निवास है। आध्यात्मिक जगत में श्री शंकर भगवान का जो स्रोत है वो सदाशिव भगवान है, तो विष्णु तत्व है। उन्हीं के द्वारा भौतिक जगत में शिव तत्व का निर्माण होता है। जैसे लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जब ब्रह्मा जी का उदय होता है विष्णु के नाभि कमल में, तो सृष्टि का निर्माण करते हैं, पहले नारद मुनि को जन्म देते हैं, वो बना कर देते हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए, फिर और 4 पुत्र को जन्म देते हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, और वो भी नारद मुनि के संग से निर्माण करने के लिए मना कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, उस क्रोध के भाव में उनके भ्रुकुटी मध्य से रुद्र फेंके जाते हैं। पहला रुद्र है शंकर भगवान और 11वां रुद्र है हनुमान जी। इस प्रकार से 11 रुद्रों का निर्माण होता है जब ब्रह्मा जी को आता है क्रोध, रजोगुण के प्रभाव से जब उनकी इच्छा नहीं पूर्ण होती है, तो भगवान की इच्छा से उनके भ्रुकुटी मध्य से शिव जी का निर्माण होता है। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर भी शिव जी महादेव हैं। चाहे देवों का राजा देव इंद्र होगा, लेकिन वो टेक्निकल बात है, मतलब देवों का कारोबार चलाने के लिए। लेकिन ब्रह्मा और शिव जी की जो पोजिशन है वो इन सब देवताओं के ऊपर है, और ब्रह्मा जी के ऊपर भी, उनके पिता होने पर भी महादेव जी महादेव है। इनका विशेष जो गुण है ये वैष्णवानां यथा शंभु, वैष्णवानां यथा शंभु, ये भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे इसमें भागवत में लिखा है। और वो परम भक्त जो है अपने पत्नी को बताते हैं, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम, स्वयं अपने पत्नी को बता रहे हैं कि सभी पूजाओं में, आराधनाओं में, उपासनाओं में श्री विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। इसे स्वयं शंकर भगवान अपनी पत्नी को बताते हैं। तो शिव जी का जो लीला है वो 2 प्रकार का है। एक तो वो लौकिक कार्य करते हैं, ऑफिशियल वर्क। उनका ऑफिशियल वर्क क्या है? विनाश करना। जब सृष्टि के विनाश का समय आता है तो शिवजी तांडव नृत्य करते हैं, और तांडव नृत्य का मतलब है सर्वनाश। वो एक उनका मेन काम है। साथ साथ में उनके अंदर इतने सुंदर सुंदर गुण हैं, जैसे कि वो नटराज हैं, नृत्य में बहुत कुशल हैं। तांडव नृत्य तो एक प्रकार का नृत्य है जो विनाशकारी है, लेकिन वैसे भी बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, और सभी कलाओं के वो सागर हैं। इसलिए जो कला उपासक होते हैं वो शिवजी की पूजा करते हैं, और साथ साथ स्वयं वो विरक्त हैं, बहुत एकदम विरक्त, उनके पास कुछ भी नहीं है, हमेशा वो क्या कहते हैं उसको, राख लगाकर, भस्म लगाकर पेट के नीचे बैठते हैं, कोई घर भी नहीं उनका। लेकिन सारे लोग जो उनकी पूजा करते हैं वो धनवान रहते हैं, सब लोग। ये बड़ी विशेष विरोधाभास है उनके अंदर, जितने भी लोग उनकी पूजा करते हैं वो सब धनवान रहते हैं, और जितने भी लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं वो गरीब हो जाते हैं। इसलिए आप डरो मत, वो गरीब आपको उन चीजों से करेंगे जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। और हमको लगता है हमारे लिए धन आवश्यक है, लेकिन भगवान जानते हैं जितना धन अधिक होगा उतने आप अधिक आसक्त होंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, तस्याहम अनुगुणामी हरिषे तद्धनम शनई, धीरे धीरे आपको जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो सब मैं छीन लेता हूं, तस्याहम हरिष्यामी, लेते रहता हूं आपसे। लेकिन शंकर भगवान का गुण ऐसा है कि वो जो भी आपके लिए आप उनके लिए करेंगे वो आपको दे देंगे। भस्मासुर ने वर मांगा और किसने लोगों ने वर मांगा, दे दिया उन्होंने, आशुतोष है, बड़े जल्दी उनको क्रोध आता है और बड़े जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, बड़े विशेष शंकर भगवान है। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है कि वो भगवान के भक्त हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है। बहुत लोग समझते हैं कि शंकर जी परम भगवान है, लेकिन स्वयं शंकर भी सोचते नहीं कि वो परम भगवान है, उनको पूछने वाले सोचते हैं कि वो शंकर परम भगवान है। ऐसे बहुत लोग अपने सीरियल में से इधर से उधर से दिखाते रहते कि अल्टीमेटली शंकर भगवान परम श्रेष्ठ हैं, लेकिन स्वयं शंकर भगवान इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। ऐसे व्यक्ति जब बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो जानते हैं स्वयं, नहीं नहीं नहीं, रामेश्वर में कृष्ण भगवान राम भगवान ने शंकर भगवान की पूजा की थी। अरे भगवान तो भक्त वत्सल है, अपने भक्त की पूजा करते हैं, जो उनके राधा रानी का नाम लेते हैं उनके पीछे पीछे जाते रहते हैं। सवेरे मैंने एक प्रवचन में सुना कि जो भक्त उनकी सेवा करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान डोलते रहते हैं, क्यों, उस भक्त के चरण की रज लेने के लिए। और वो कहते हैं कि ये भक्त मेरी सेवा करते हैं इसीलिए मेरे चरणों के रज में शक्ति आती है, ये जो सब लोग मेरे चरण की रज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो शक्ति कहाँ से आई है, क्योंकि मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं इसलिए मेरे चरण के रज में शक्ति आ गई है, इसलिए मैं उनके चरण की रज चाहता हूं। इसलिए जो उनका नाम लेते हैं उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, पीछे उनके जो छह मुक्तियां हैं वो भागते रहती हैं। लेकिन भक्त जो है अपनी सेवा में रत रहता है, और सेवा कैसी होनी चाहिए, हम लोग भी सब सेवा कर रहे हैं यहां पर, है ना, सेवा निरपेक्ष होनी चाहिए, सेवा कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए। जैसे ही वो बोझ बनता रहे, क्या रे बोर हो रहा है अभी इतना काम करना, सेवा खत्म, कर्म चालू और कर्म फल भी चालू, समझना बहुत जरूरी है। सेवा ऐसी वस्तु है कि सेवा करने से आदमी भवसागर से पार हो जाता है, ऐसा कोई कार्य नहीं सेवा के अलावा जिससे हमारा हृदय का जो मल है अनर्थ है वो नष्ट हो सकता है, केवल सेवा ही सेवा से। अपने अंदर कितने दुर्गुण होंगे चलेगा, लेकिन सेवा अगर हम सही भाव से भगवान कृष्ण के और उनके भक्तों की कर रहे हैं तो सारा मल जो हृदय का वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको बोझ समझने लगेंगे हम तो सेवा का सेवत्व जो है खत्म हो जाएगा और वो बंधन में बांधने लगेगा, उसमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी, कंपटीशन उत्पन्न हो जाएगी जो सही नहीं है, लौकिक रूप से उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन सही रूप से जो सेवा करेंगे, जैसे कभी कभी हम क्या होता है सेवा से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाँ एकदम फ्रस्ट्रेटेड टोटली सर्विस, तो वही वो सेवा का सेवा रूप जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए नियमित रूप से सत्संग करना जरूरी है। हम लोग क्यों इतना आपको जोर देते हैं कि आप आइए कथा में, आइए जप में, आइए कीर्तन में बैठिए, क्योंकि सेवा का सेवा रूप जो है भगवान का नाम देता है, भगवान की कथा देती है, भगवान की लीला देती है। तो हम किसी भी रूप से अपनी सेवा को फिलंथ्रोपी यानी कि समाज सेवा नहीं बनाना चाहते, लौकिक सेवा नहीं बनाना चाहते, हम अपनी सेवा को पारलौकिक सेवा बनाना चाहते हैं। अपनी सेवा हमको किसी भी हालत में किसी भी रूप में भगवान के चरणों में अर्पण करनी है, और कहीं किसी और लक्ष्य की ओर जाना नहीं है, नो अदर डेस्टिनेशन। ये हम सब सेवायतों को बहुत समझना जरूरी है कि हमारी सेवा केवल एक व्यक्ति के लिए जो परम भगवान है, जो मुक्तिदाता है, मोक्ष देने वाले हैं, मुकुंद हैं, शंकर भगवान ही उन्हीं की सेवा में है। हमेशा ध्यान में रहते हैं, कैसे रहते हैं या तो वो भगवान की रास लीला पर ध्यान कर रहे हैं या तो भगवान रामचंद्र का ध्यान कर रहे हैं, हमेशा चिरंतन अधिकतर वो रास लीला के ध्यान में रहते हैं। नारद मुनि से भी चर्चा करते रहते हैं रास लीला के बारे में, भगवान के बारे में, परम परम वैष्णव है वो। लेकिन दुर्भाग्य से लोग उनकी पूजा केवल भौतिक प्राप्ति के लिए करते रहते हैं, उनको धन चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, और कुछ कला में निपुण होना है, कुछ नाम प्राप्त करना है, तो उनकी पूजा करते रहते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। और शिव जी अपने कर्तव्य के रूप में उनको देते भी है वरदान, लेकिन हृदय से वो प्रसन्न नहीं होते हैं जब आप उनसे कोई भौतिक चीज मांगते हैं। जब हम शिव जी से भगवान की भक्ति मांगते हैं तो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं वो। संक्षेप में बताता हूं आपकी आपको कहानी। ब्रज में एक आत्मदेह नाम के ब्राह्मण थे, शिव जी के बड़े भक्त थे, और उन्होंने शिव जी का बड़ा सेवा किया था बिना किसी अपेक्षा से। ऐसे कोई शिव जी के भक्त नहीं होते जो मन में कोई हेतु रखे बिना उनकी पूजा करते हैं। सब लोग अधिकतर क्या होता है, अधिकतर जो है वो जो राक्षस होते हैं ना, वो अपनी राक्षसी आसुरी इच्छा पूर्ण करने के लिए शंकर भगवान की पूजा करते हैं, जैसे भस्मासुर है। क्या बोला उसने, अरे अपना मांस काट के डाल रहा था वो अग्नि में, शंकर भगवान ये क्या चाहिए आपको, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, नहीं हमको ऐसा वरदान दो कि हम जिसको भी हाथ लगाएंगे वो भस्म हो जाएगा, तो वो भस्म हम आपको अर्पण करते रहेंगे, ये हमारी इच्छा है। ऐसे कई लोग पूजा करते हैं, और अधिकतर रावण कंस ये सब लोग शिव जी के भक्त हैं। शिव जी का कोई दोष नहीं है, मांगने वाले का दोष है वो तो शुद्ध भक्ति को देने में समर्थ है, लेकिन मांगने वाले ऐसे कुछ मांग देते हैं और कुछ करते भी है तपस्या, तो उनका वो कर्तव्य है कि भाई इतना सब कर रहे हैं तो हमको देना चाहिए उनको। लेकिन आत्मदेव ऐसे भक्त नहीं थे, वैसे विरला भक्त थे शिव जी के, जो शिव जी के केवल शिव जी को संतुष्ट करने के लिए सेवा करते थे। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, सपने में एक बार दर्शन दिया उनको, उन्होंने बोला कि कुछ मांगो, आपके भक्ति से और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोले मैंने कभी भी कुछ इच्छा और रख के आपकी सेवा नहीं की थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न हैं मैं उसमें मेरी परिपूर्णता है। हरे कृष्ण डॉक्टर श्यामलाल स्ट्रगलिंग मे बी कैन स्टैंड अप। सो मैं शिवजी प्रकट हो रहे हैं, प्रभु शिवजी अपेयर हो रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि नहीं नहीं मेरा दर्शन कभी खाली जाता नहीं है, वरदान तो मैं दूंगा ही और आपको लेना भी है। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं लेना चाहता, नहीं लेना ही होगा। तो फिर उन्होंने सोचा, बड़ा बुद्धिमान था वो, निरपेक्ष था ना वो, निरपेक्ष व्यक्ति जो बड़े सही बुद्धिमानी होते, जिसकी अपेक्षा होती है ना, किसी कामना होती है ना, उसकी बुद्धि जो है कामना के प्रभाव से भ्रष्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, माया के प्रभाव में आ जाती है। लेकिन जो निरपेक्ष व्यक्ति होता है वो एकदम बिंदास भी होता है, निडर होता है वो। क्यों? क्योंकि कोई उसको अपेक्षा नहीं है, वो साफ साफ किसी को कुछ बोल सकता है, गुस्से से नहीं सत्य बोल सकता है वो, एसर्टिवली मतलब जोर के साथ बोल सकता है। जिसको अपेक्षा होती है ना किस चीज से, वो हमेशा वो बात को घुमाएगा, मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि उस मन में कुछ स्वार्थ है। कामना वाला व्यक्ति हमेशा ऐसे डोलमोल होता है, लेकिन जो निरपेक्ष होता है उसकी बुद्धि जो है सतर्क होती है और एकदम क्लीन होती है। तो तुरंत सोच के उसने बताया कि आपको जो सबसे प्रिय है वो मुझे आप दे दो। तो शिव जी आनंद से नाचने लगे, कह रहे ऐसा कोई पहला व्यक्ति है जो मुझसे मेरी प्रिय वस्तु को मांग रहा है, मैं सबको देने को लालायित हूं, उत्सुक हूं उसको देने के लिए, लेकिन कोई मांगता ही नहीं है। सब लोग धन मांगते हैं, औरत मांगते हैं, शरीर का भोग मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। तो बहुत खुशी से बोले कि आप कल सुबह उठना, स्नान करना और अपने कुएं में उतरना। वो पुराने जमाने में कुएं में बहुत ये क्या कहते हैं उसको, टनल्स क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ गुफा जैसे होते थे, अंदर रस्ते होते थे, अंदर दाहिने रस्ते में घुस जाना आप, और उसके अंत में आपको मेरे हृदय की प्रिय वस्तु मिलेगी। तुरंत उठते हैं, तुरंत भली भोर में स्नान करके भागते हैं, जीव कुएं में उतरते हैं तो उनको राधा वल्लभ जी की मूर्ति प्राप्त होती है। तो राधा वल्लभ लाल की तो शिव जी ऐसे भक्ति देने वाले समर्थ व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति ने सही चीज मांगी तो तुरंत दे देते हैं उसको। तो ऐसे है शिव जी, हमेशा भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। और जो ब्रज भूमि है उसमें अनंत शिव जी के स्वरूप यहाँ प्रकट है, लेकिन पांच मेन स्वरूप शिव जी के यहाँ पर अधिष्ठात अधिष्ठान जिनका है वो माने गए हैं, वो है नंदगांव के नंदीश्वर, जहाँ पर वो पर्वत बने हुए हैं। हाँ देखो महादेव हैं, वो देवों के भी देव हैं, कभी कभी पांच मुख भी धारण करते हैं, वैसे पंचमुखी शिव जी हैं और कभी कभी एक मुख में भी रहते हैं। तो वो भगवान के, कृष्ण बलराम के, सखाओं के चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए वहां पर्वत बने हुए हैं। ये पत्थर बनना जो है ना, हम लोग कथा में सुनना अच्छा लगता है, आप सोच लो अगर हम पत्थर बन जाए तो हमारी क्या पोजीशन है। अहिल्या पत्थर बनी थी, नो कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस है लेकिन नथिंग यू कैन डू, कुछ भी नहीं कर सकते, पड़े रहना एक जगह पे बस, दिन रात वर्षा हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई टट्टी पेशाब करे, कोई चले, कोई कुछ भी करे, उसके ऊपर कोई डंडा लगाए, कुछ नहीं कर सकते। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था अहिल्या को, पत्थर बनी थी वो, भगवान के चरण सब से उसका उद्धार हो गया। तो पत्थर बनना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मा जी और शिव जी जो है बड़े आसानी से हृदय से इच्छा से पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी भावना अलग है। वो सोचते नहीं कि क्या फायदा पत्थर बन के ऐसे पड़े रहना पड़ेगा ना, वो सोचते हैं कि वो बनने से हमारे ऊपर राधा कृष्ण क्रीड़ा करेंगे, उनके चरणों की धूल अनायास ही प्राप्त हो जाएगी, बड़ा आसान हो जाएगा, साथ साथ लीला का अवलोकन भी करने को मिलेगा, हमारे ऊपर बड़े आसानी से बिना संकोच में डोलेंगे, भागेंगे इधर उधर, कितनी बड़ी बात है। तो एकदम निसंकोच पत्थर बन जाते हैं और वो नंदीश्वर जी हैं, आराध्य है हमारे लिए। हाँ फिर मथुरा में भूतेश्वर हैं, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव है और काम्यवन में कामेश्वर महादेव, इस प्रकार से पांच महादेव हो गए। ये जो कामेश्वर महादेव काम्यवन के हैं, ये सबकी कामना पूरी करने वाले हैं। इनकी महिमा जानकर वृषभानु महाराज जो राधा रानी के पिताजी हैं, राधा रानी का जन्म होने के पहले उन्होंने कामेश्वर महादेव के पास जाकर पुत्री प्राप्त करने का इच्छा प्रकट किया था। वे आप बोलेंगे अरे इतने बड़े वृषभानु महाराज वो भी कुछ मांग रहे हैं, वो तो भगवान के परम भक्त हैं, वो उनका मांगना जो है वो खुद के लिए नहीं होता है। यशोदा देवकी ने भी आप बोलेंगे अरे कितने पुत्र को जन्म दिया उन्होंने, हमारे जैसा कोई होता अगर कोई मामा ऐसे है कि वो पहले बच्चे को मार दे तो हम बच्चा जन्म देंगे नहीं आगे उसके, बोले काम में मत करो ऐसा, क्यों जन्म दिया उसने बार बार, सोचने की बात है ना। आपको पता है कि हर बच्चा आके मारने वाला है, अभी क्रूरता से मारने वाला है, ऐसा नहीं कि आराम से जाके मेरे आंखों के पीछे मारेगा, सामने सामने पत्थर पे पटक पटक के क्रूरता से मारने वाला है, फिर भी जन्म दे रही है हर महीने हर साल, क्या कारण है उसका। तो उसको पता था कि आठवें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आने वाले हैं जगत का उद्धार करने के लिए, तो मेरा ये सेवा है कि आठवां नंबर कब आएगा, जब सात को जन्म देने के बाद में आठवां नंबर आएगा ना, तो सात को जन्म देना ही पड़ेगा। कितनी कठोर सेवा है, कितनी मतलब कितनी दर्दनाक सेवा है, लेकिन भगवान के आनंद के लिए भक्त जो है वो किसी भी दर्द को सहन करने को तैयार है और वो दर्द सहन करके सेवा करने को तैयार है। जैसे गोवर्धन जी थे हमारे, कैसे गोवर्धन जी थे, इतने बड़े भयंकर वर्षा को सहन कर रहे हैं, आघात है आघात मुसलधार, ये खंबा देखो आप, खंबा ऐसे खंबा के दर से बूंद गिर रही है आकाश से धड़ाधड़ एकदम, कितना भयंकर घटना है। वो अपने शरीर पर झेल रहे हैं, वो तूफान आंधी सबको झेलकर क्या कर रहे हैं कि भक्तों को आनंद मिले, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, उनकी सेवा के लिए भगवान की सेवा के लिए वो इतना कष्ट स्वयं झेलकर, वो विनाशकारी संवर्तक बादल के आघात था, वो ऐसा कोई साधारण आघात नहीं था, संवर्तक बादल विनाशकारी होते हैं, प्रलय काल में उनका उपयोग होता है, वो बरस रहे हैं और वो सब आघात सहन करके ये भगवान को सुख दे रहे हैं और उस सुख में अपने को भी मतलब अति आनंद का अनुभव कर रहे हैं, एक्सटेसी को अनुभव कर रहे हैं, ये भगवान के भक्त हैं। वैसे भी देवकी भी वैसी खुद कष्ट सह करके भगवान को सहायता कर रही है। तो ये बात कहां से निकली थी, यस नंदीश्वर पर्वत, वृषभानु महाराज कन्या की मांग कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि हमारी सेवा क्या है, उनका स्थान क्या है वो जानते हैं, उनकी सेवा क्या है जानते हैं, इसलिए वो किसी भी रूप से लगते हैं कि भौतिक कुछ पूछ रहे हैं लेकिन वैसा नहीं है, ऐसा भगवान के शुद्ध भक्त है। तो कामेश्वर महादेव के पास वृषभानु महाराज ने पुत्र प्राप्त करने की, पुत्री प्राप्त करने का विनती किया था। भूतेश्वर की लीला थोड़ी अलग है, भूतेश्वर को कंस महाराज आते थे वहां उनके पास और भूतेश्वर की पूजा करते थे कि कृष्ण को मारने के लिए शक्ति दो। शिव जी ऐसी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, बाणासुर भी ऐसे आया था, मुझे ऐसा कुछ बताओ फिर कृष्ण को मारूं। काशीराज भी ऐसे आए थे, काशीराज का पुत्र था सुदक्षिण, उसने भी यज्ञ किया था, मुझे कृष्ण को मारने के लिए कुछ उपाय बताओ। तो कोई बात नहीं, जब युद्ध करके मैं पीछे से आऊंगा ना। ऐसा नहीं बोलते तथास्तु, ये लो अस्त्र, अस्त्र लो और तुम इससे कृष्ण को मार सकोगे, ऐसे नहीं बोलते। निश्चिंत रहो, तुम कृष्ण में जब हमला करोगे ना तो मैं आऊंगा पीछे से, पीछे आके क्या करूंगा बताऊंगा आऊंगा जरूर। तो ये राक्षस लोग जो थे ना, इतने द्वेष ईर्ष्या कामना वासना से ग्रस्त होते हैं, तो वो समझते नहीं कि उसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है। तो इस तरह से भूतेश्वर जो है उनका कंस महाराज ने पूजा किया था। और गोपेश्वर की लीला जो है बहुत सुंदर लीला है, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। गोपेश्वर महादेव वृंदावन में विराजमान, जब भगवान ने शरद ऋतु में रास रचाया तो उसमें शिवजी बहुत आतुर हो गए, सब देवता भी आतुर हो गए, लेकिन शिवजी एक विशेष है, बाकी किसी देवताओं को वहां पर प्रवेश नहीं, शिवजी ने भी प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनको रोका गया। ललिता जी जो है भगवान की सखी है, राधा रानी की प्रथम सखी, वो रोकती है उनको, कहते यहाँ पर केवल एक पुरुष को प्रवेश है, वो श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां यहाँ पर। तो ये अभी हम लोग लौट जाएंगे ना, जो आप और हम गए, बोला कि यहाँ पर केवल स्त्रियों को प्रवेश है, तो भाई ठीक है हम पुरुष हम लौट के जाएंगे। नहीं, उन्होंने पूछा कि कैसे स्त्री बनना है बताओ, हमको प्रवेश चाहिए। बहुत मुश्किल बात है, सोचो जरा आप, थोड़ा सोच के देखो कि आपको बोलेंगे आपको स्त्री बनना है, तो बोलेंगे नहीं हम घर जाएंगे, रास्ते ला आप ही करो। हमारे शरीर के साथ में हमारा इतना अटैचमेंट है, अहम ममेति, मैं पुरुष हूँ इस बात को मैं इतना अटैच्ड हूँ, भले कुरूप हूँ, भले कमजोर हूँ, भले बुढ़ा हूँ, भले पुरुष होने पर मेरे शरीर में कोई शक्ति भी नहीं आएगी, पुरुष की शक्ति, मैं किसी स्त्री पर जो जवान है उस पर डिपेंड हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं पुरुष हूँ, ऐसा एक गर्व होता है अपने अंदर, उसी को कहते हैं देहात्म भाव। शिवजी परम वैष्णव का मतलब क्या होता है, कोई देहात्म भाव नहीं है, बियॉन्ड द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। और उनकी दो बातें हैं कि उनको अपने शरीर से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, और दूसरी बातें हैं उसकी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भगवान की सेवा करने के लिए इतने आतुर हैं और कुछ भी करने को तैयार है उनकी सेवा करने के लिए, स्त्री बनने के लिए भी तैयार है। झट से सवाल पूछते हैं, सोचते नहीं है क्या करना होगा बताइए, ललिता जी झट से जवाब देती है कि आपको मान सरोवर में जाके स्नान करना पड़ेगा। तो ये हवा की गति से भाग के गए, सोचा नहीं क्या होगा कैसे होगा, पार्वती क्या सोचेगी ये सोचा नहीं उन्होंने, क्योंकि जानते हैं कि उनकी भक्त पत्नी भी परम भक्त है भगवान की, हाँ वही भाव की है वो भी, तो भागे बिल्कुल बिना सोचे और तुरंत डुबकी लगाया मानसरोवर में, और उनको गोपी का शरीर प्राप्त हुआ और वापस भाग भाग के आए, बड़ी सुंदर गोपी बनकर आए। जैसे भाग भाग के आए ललिता जी हंसने लगी, सब गोपियां भी ताली पीट के हंसने लगी, क्यों हंसने लगी, अभी तो गोपी बन के आए ना, सुंदर गोपी बन के, लेकिन उनके ऊपर नाग जो थे वो गोपी नहीं बने, गले में नाग, बड़ी सुंदर औरत होगी एकदम, बहुत सुंदर, गले में एक नाग, सर पे एक नाग, हाथ पे नाग, तो कैसे लगेगा, ये भी समझने वाली बात है। मानसरोवर में हमने भी स्नान किया, हम कहां गोपी बने, क्योंकि मानसरोवर में केवल शरीर से प्रवेश करने से गोपी नहीं बनता है आदमी, भाव की जरूरत है, भाव ही सब कुछ है, शरीर सब शरीर तो केवल आवरण है, अपना माध्यम है, सहायता करने वाला एक इंजन है, यंत्र है, लेकिन गोपी भाव उनके अंदर था इसलिए वो गोपी बने, शरीर को प्राप्त किया। और सांप के अंदर वो भाव नहीं था, सांप सांप ही रहे, हम सबको समझना जरूरी है, उनके पास भाव था, यही शिवजी की विशेषता है, आतुरता और भाव जो भक्ति का है वो अतुलनीय है उनका। फिर बड़े प्रेम से उनका इतना भाव, इतनी आतुरता देखकर ललिता जी बड़े प्रेम से हाथ पकड़ के शिव गोपी को अंदर ले जाती, सिद्ध रास मंडल के सब सब गोपियां अपने अपने स्थान पर विराजमान है ना, उधर कमलाकृति आकार है, बहुत सुंदर सखियों का जूत है, फिर अंदर जाएंगे तो और मंजरी हैं, फिर और जाएंगे तो अशसखी हैं, फिर उसके बाद में सरत सिंहासन है, वहाँ दोनों विराजमान हैं, राधा और कृष्ण श्रृंगार किए हुए, छामा ढुला जा रहा है, संगीत गाया जा रहा है, उस सब में से वो हाथ पकड़ के उनको ले जाती है और उनके हाथ में चामर पकड़ा दी, फिर रास में वो भगवान की चामर सेवा करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, फिर उनको ललिता जी बाहर लेके आती और आशीर्वाद देते कि आप यहीं रहो और हमेशा रास मंडल की रक्षा करो। तो ये रास मंडल कहाँ है, बंसीवट पे, हाँ वृंदावन के उत्तर किनारे में है, बहुत सुंदर एकांत जगह है। उस समय तो जब भगवान ने राज किया तो वो जंगल में था, एकदम एकदम जंगल में, बहुत दूर तक गोपियों को आना पड़ा था उसमें। तो राज जब शुरू हुआ तो शिव जी वहां पहुंचे और गोपेश्वर बने, स्त्री रूप धारण किया उन्होंने, मतलब सखी भाव धारण किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, और आज भी वो विराजमान है वहां पर, राजमंडल की रक्षा कर रहे हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में, और सोमवार के दिन शाम को उनका श्रृंगार होता है। लिंग रूप में है लेकिन शाम को सोमवार को वो उनको सखी बना देते हैं, श्रृंगार करते हैं उनको, कुमकुम लगाते हैं उनको, नाक में नथनी लगाते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, हार पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, पल्लू ओढ़ देते हैं उनको, बहुत सुंदर सखी बन के वो फिर रास में जब प्रवेश करते हैं। काम्य वन में उनकी और एक सुंदर लीला है, यहाँ पर तो वो नौ सखियाँ थे ना, थोड़े से उनको पता नहीं था कि उनको श्री में प्रवेश है, तो बोलना पड़ा उनको श्री बनना पड़ेगा। लेकिन काम्य वन में भगवान रासलीला करते हैं, काम्य वन में भगवान रासलीला करते हैं, प्रधान लीला तो काम्य वन में सख्य लीला है, लेकिन रासलीला भी भगवान करते हैं श्रृंगार स्थली पे। तो कैलाश में बैठकर ये सुन रहे हैं, नारद मुनि से भगवान का रास का वर्णन सुन रहे हैं, तो इतने व्याकुल हो जाते हैं सुनकर, झट से पृथ्वी में काम वन में आ जाते हैं, और इस बार गोपी शरीर धारण करके ही, श्रृंगार करके ही प्रवेश करते हैं, सीधे अंदर पहुंच जाते हैं, और इतने सुंदर रास में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण जो है, जो रासेश्वर हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की इतनी हृदय से भाव से सेवा करते हैं वो, तो अपने गले का स्वर्ण हार निकालकर उनको पहनाते हैं, उस सखी को, उस गोपी को पहना देते हैं। वहां पर एक कुंड है, उसका नाम है स्वर्ण हार कुंड, जहां पर शिव जी निवास करते हैं, जहां पर भगवान ने उनको स्वर्णहार अपने हाथ से बड़े प्रेम से पहनाया था। यही शिवजी ने 85,000 वर्ष काम्यवन में तपस्या किया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कई जगह तपस्या किया है इन्होंने, कपोतेश्वर के रूप में उन्होंने भुवनेश्वर के पास में तपस्या किया है, एकदम कबूतर की तरह हो गए, तो इतने इतने अकाल पड़ा था वहां पर, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उस अकाल को मिटाने के लिए शिवजी ने तपस्या किया और वो एकदम कबूतर के जैसे बन गए थे, कपोत, उसका नाम है कपोतेश्वर महादेव। तो भगवान ने दर्शन दिया है, उनको आशीर्वाद दिया है, और इनके आशीर्वाद से सब जगह हरियाली छा गई। एक जगह और तपस्या कर रहे हैं भुवनेश्वर में, बिलेश्वर महादेव तपस्या कर रहे हैं। क्या ऐसा एक बिल है बहुत जोरदार, जहां से पाताल लोक से राक्षस लोग पृथ्वी पर आते हैं आतंक मचाने के लिए, तो बिल पर शिव जी खड़े हैं, बिलेश्वर महादेव सब राक्षसों को रोके हुए हैं वहां पर। तपस्या तो उनका साई भाव है, नेचुरल एकदम, कोई कष्ट नहीं है। तो 85,000 साल उन्होंने काम मन में तपस्या किया, तो चतुर्भुज भगवान है वहां पर कामेश्वर में, बड़ी लंबी कथा है, भगवान चतुर्भुज भगवान के रूप में वहां पर विराजमान है। तो प्रकट होते भगवान विष्णु और कहते कि आपसे सेवा से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए आपको मैं यही निवास दूंगा, आपकी काशी को आके यही बसा लो। तो काम्य मन में काशी भी प्रकट है, काम्य मन में क्या प्रकट नहीं है, काम्य मन में गया कुंड प्रकट है, श्रीलंका प्रकट है, सेतु बंध प्रकट है, रामेश्वर प्रकट है, आदि बद्री केदारनाथ, हाँ क्या नहीं प्रसन्न प्रकट है वहां पर, बहुत धाम वहां प्रकट हो गए, हर की पैड़ी, मंदाराचल माउंटेन और स्वर्ण गुफा, कई जगह है, सौगंधिका सरोवर, हर की पैड़ी, गंगोत्री जमनोत्री, सब जो हिमालय में जितने भी तीर्थ हैं वो सब काम्य मन प्रकट है। वैसे काशी भी शिव जी के द्वारा प्रकट की गई है, परशुराम द्वारा नौ कुंड वहां प्रकट हो गए। इस प्रकार से शिव जी का बहुत बड़ा अजीब लीला है। और आखिरी जो वृंदावन धाम के शंकर भगवान है वो है चक्रेश्वर महादेव। चक्रेश्वर महादेव को इसलिए कहा गया कि वो उस जगह पर विराजमान है महादेव जी, जहां पर चक्र जी ने भगवान के आशीर्वाद से गोवर्धन में चिरंतन निवास प्राप्त किया था। कितनी बढ़िया सेवा की थी उन्होंने चक्र ने ना, ऐसे गोल गोल घूमे थे गोवर्धन की दिला जब हो रही थी, इतने तेजी से घूमे थे कि उन्होंने एक भी बूंद जो है, मुसलधार प्रलयकारी वर्षा हो रही है फिर भी उन्होंने एक भी बूंद गोवर्धन को लगने के बाद जमीन पे उतरने को नहीं दिया, उसको वहीं से उसको बैक टू होम भेज दिया, रिटर्न विथ थैंक्स। जमीन पर छूने सका बूंद, पहले ही जमीन पर बूंद गिर रही थी गिरिराज को उठाने के पहले, गिरिराज को उठाने के बाद में चक्र जी की सेवा की वजह से एक भी बूंद जो है जमीन पे नहीं गिरी। तो चक्र जी ने फिर सेवा के करने के बाद भगवान को विनती किया, क्या मुझे यहाँ पर आश्रय मिलेगा आपके धाम में, तो भगवान ने उनको तथास्तु कह दिया। तो चक्र जी जो है वहां विराजमान है चक्र तीर्थ में, तो वहीं पर महादेव जी विराजमान है उस धाम की रक्षा कर रहे हैं, मानसी गंगा धाम की, गोवर्धन धाम की। और इनकी जो लीला है, सनातन गोस्वामी जी वहां भजन करते थे। जब उनके मदन मोहन मंदिर का काम शुरू हुआ, जो मर्चेंट ने उनको बहुत धन दिया, तो उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करना आरंभ किया। तो वहां से छोड़ के चले आए अपने कृष्णदास ब्रह्मचारी नाम के शिष्य के ऊपर, वो काम छोड़ के वो गिरिराज गोवर्धन गए, वहां पर भजन करते थे। तो सनातन गोस्वामी के आगमन के पश्चात चक्रेश्वर महादेव बड़े प्रसन्न हो गए, अरे संत का सहायक। ऐसे कहते हैं कि बड़े ही दुर्लभ स्थिति में जन्म जन्मांतर के पुण्य करने के बाद में भगवान की कृपा से संत का दर्शन होता है, भक्त का दर्शन होता है। भक्त का दर्शन जो है कोई ऐसे कॉमन चीज नहीं है, सस्ती बात नहीं है, बहुत विरला चीज है। मनुष्य जन्म में वो संतों का दर्शन बहुत दुर्लभ है, उनका संग प्राप्त होना। तो महादेव होने पर भी स्वयं भक्तों के संग के लिए लालायित रहते हैं, स्वयं भगवान भी अपने भक्तों के संग के लिए लालायित रहते हैं। हमारी बात क्या है, हम तो बद्ध जीव हैं, हमको तो संग चाहिए ही चाहिए, हमारा ट्रीटमेंट है वो बीमारी का। लेकिन भगवान को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जो है भक्तों के संग के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। हमको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन में भक्तों के संग के जैसे मूल्यवान वस्तु और कोई नहीं है। शंकर भगवान जो है सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करके बड़े प्रसन्न थे, लेकिन एक गड़बड़ हो गई वहां पर, बहुत मच्छर हो गए। तो सनातन गोस्वामी अपना लेखन करते थे, हरि भक्ति विलास और कई ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं, दशनी टीका और टिप्पणी, कई ग्रंथों पर, कई शास्त्र पर उन्होंने अपना भाष्य लिखा है। भजन भी करते थे, परिक्रमा भी लगाते थे गोवर्धन की बड़ी 40 किलोमीटर की। लेकिन परेशान हो गए, उनको बहुत डिस्टर्ब होने लगा, तो वो जगह छोड़ के जाने लगे। तो एक ब्राह्मण के रूप में शिवजी प्रकट हो गए और बाबा को मिले, बाबा क्यों जा रहे हैं आप, रहो यहाँ पर, मानसी गंगा का आश्रय है, गिरिराज जी का आश्रय है, क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि बहुत मच्छर तंग करते हैं, मैं अपनी सेवा नहीं कर पाता हूँ। मच्छरों से उनको परेशान नहीं है, लेकिन सेवा में बाधा आ रही है इसलिए जा रहे हैं। तो शिव जी समझते हैं कि उनकी डिफिकल्टी क्या है, तो चले जाते हैं वहां से और जाकर उस देवता से मिलते हैं जो कीटकों के इंचार्ज हैं। क्योंकि दुनिया की हर वस्तु, हर जीव, हमारे शरीर का एक एक हिस्सा जो है ना, वो अलग अलग देवताओं के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारा मन जो है चंद्र देवता कंट्रोल करती है, ऐसे हमारी आंखें, हमारी सूंघने की शक्ति जो है पृथ्वी देवता कंट्रोल करती है, स्वाद लेने की शक्ति जो है वो कोई करता है। हमारे शरीर में जो वायु घूमता है ना, जोड़ों में से, स्पाइन में से, और फेफड़ों में, पेट में, 10 प्रकार के वायु बताए गए, 5 प्रकार के वायु बताए गए, वायु देवता द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। वो तब जाके हजम होता है, खाना पचन होता है, तब जाके विष्ठा बाहर फेंकते हैं हम, तब जाके मूत्र बाहर फेंक सकते हैं, तब जाके सांस ले सकते हैं, तब जाके सोच सकते हैं। दिमाग में वायु घुस गया तो हम पागल हो जाते हैं, और आधे शरीर से निकल गया तो उसको अर्धांग वायु कहते हैं, पैरालिसिस। ये सब वायु का खेल है। इस तरह से हर वस्तु के, हर यंत्र के एक एक देवता होते हैं, कंट्रोल करते हैं। वैसे कीटक जो जितनी भी योनियां हैं उसका भी देवता होते हैं। ये तो महादेव हैं, जाके उनको सीधे मिलते हैं मिनिस्टर को, वो कहते हैं इस जगह से मच्छरों को हटाओ। आज भी ब्रजवासी कहते हैं कि मच्छर वहां पर अभी भी नहीं है। तो ब्राह्मण आके बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मच्छर यहां से हट जाएंगे, आप यही रहो, आप एक दो दिन रहो, देखो रह जाते सनातन गोस्वामी। मतलब कितने वो लालायित हैं भक्तों के संग के, ये हमें सीखने वाली बात है। वो सनातन गोस्वामी का संग जो है वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए इतना मेहनत किया उन्होंने, ब्राह्मण का रूप लिया, दर्शन दिया, बात किया, फिर गए उसका इलाज करके आए ठीक से। तो ये चक्रेश्वर महादेव की सेवा है, वहां पर वो रहते हैं हमेशा प्रेम से। नंदगांव में नंदीश्वर के रूप में ब्रजवासी उनकी पूजा करते हैं, स्वयं नंद महाराज भी नंदीश्वर की पूजा करते हैं। आप देखते हैं ना मंदिर के नीचे थोड़ा सा लोअर लेवल पे एक लिंग है शिव जी का, नंदीश्वर महादेव। और एक ब्रज में एक चिंताहरण महादेव है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब समझ के कई साल पहले। ऐसे कहा गया इस त्यौहार वो महादेव जी इतने कृपालु हैं, आपके मन में कोई भी चिंता होगी आप केवल उनके पास जाएंगे तो चिंताहरण हो जाएगा। नाम ही रखा गया चिंताहरण महादेव। मैं बताऊंगा आपको उनका एड्रेस, मुझे मिलना बाद में। और नंदगांव में एक होते हैं आशीश्वर महादेव। ये शिवजी जो है ना, वो जो भी करते हैं, मैं जितना आपको कथा बताते जा रहा हूं, हर एक में सीख है हमारे लिए, हर एक में शिक्षा है। आशीश्वर महादेव देखो, भगवान जो है जब लीला करते हैं पृथ्वी पर, तो वो बाल रूप धारण करते हैं केवल भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में उनका बाल रूप नहीं है। वो 16 वर्ष के किशोरावस्था में हमेशा रहते हैं, राधा रानी। और वो जब किसी लोक में अवतार लेते हैं, तब माँ के घर में जन्म लेते हैं, बालक बनते हैं, रेंगते हैं, दूध पीते हैं, तोतले बोल बोलते हैं। तो ये सब जो लीला है वो केवल भौतिक जगत में दिखाई देते हैं। तो शिव जी को पता चला कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, तो कैलाश से भाग के आए वो भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए, आतुर होकर आए एकदम, साधु का वेश धारण करके आए और भिक्षा मांगने के लिए गए नंद बाबा के पास घर पे। भवती भिक्षाम देही, तो मैया आई चावल मोती गहने लेके। तो कहते हैं कि हम ये सब के लिए नहीं आए हैं, हम आपके लाला के दर्शन के लिए आए हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं। लेकिन माता जो है ना, भगवान की रक्षा करने के लिए इतनी मतलब परेशान है वो राक्षसों के आतंक से, तो बिल्कुल नहीं कराऊंगी दर्शन। बोले क्यों नहीं कराएंगे? बोले कभी राक्षस लोग सुंदर कन्या बन के आते हैं, कभी गाड़ी बनकर आते हैं शकट बन के आते हैं, कभी हवा बन के आते हैं, कभी बैल बन के आते हैं, कभी बदक बन के आते हैं, अभी आज साधु बन के आए हैं, बिल्कुल नहीं दूंगे दर्शन। चाहे तो ले लो चावल और मोती और गहने, तो चले जाओ यहां से, लेकिन बिल्कुल किसी भी हालत में लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बहुत विनती करते हैं कि हम वैसे नहीं हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, कैलाश से आए ना, बड़ी दूर से आए हैं। बोले कहीं से भी आओ लेकिन चले जाओ, और दरवाजा बंद करके चले जाते हैं अंदर। अभी आप सोच सकते हैं शिवजी की क्या हालत होगी, इतने दूर से आए हैं, इतनी इच्छा लेकर के भगवान का दर्शन करूंगा बाल रूप का। तो पास के वन में जाके बैठ जाते हैं, उस वन का नाम है आशीश्वर वन, जो बाद में पड़ा उसका नाम। वहां बैठ के खूब रोते हैं भगवान के दर्शन की अभिलाषा से। फिर भगवान जो है वो अंतर्यामी, जानते हैं ना कि मेरा भक्त रो रहा है, मेरे दर्शन की अभिलाषा लेकर आया है। भगवान सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो फिर अपना वो जो अस्त्र जो है वो निकालते हैं, कौन सा अस्त्र? रोने का अस्त्र। वो अस्त्र को कोई माता कोई पिता परास्त नहीं कर सकते। हाँ साहब, आपको अनुभव होगा ना इसका, इतने बड़े डॉक्टर MD हैं, एक एक्सपर्ट है, उनके पीछे 100-100 लोग डोलते हैं रोज सुबह दिखाने के लिए, लेकिन उनको उनके पीछे भागना पड़ता है, अपने विश्वनाथ के पीछे, है ना। जब रोता है तो सबको छोड़ना पड़ता है, नींद भी हराम हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते हैं, नथिंग यू कैन डू। तो वो अस्त्र निकालते हैं, रोने लगते हैं, तो उनको माखन देते हैं, मिश्री देते हैं, खिलौना देते हैं, गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ फेंक देता है। अभी क्या किया जाए, सब कुछ किया जो रोज करते हैं। तो सखियां चर्चा करती है क्या किया जाए। अभी उसमें पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी कौन है? वो जो आए थे ना ऋषि बनकर, ये उनकी पत्नी है पार्वती जी। पूर्णमासी का अवतार लेकर ब्रज में रहती है, गोपियों के गुरु बनकर रह रही है, सांदीपनी की माता है वो। वो नंदगांव के रास्ते पर उनका आश्रम है, पूर्णमासी पुरोहितानी आश्रम, राइट साइड में आता है, थोड़ा सा जंगल में उनका आश्रम है। नंदीमुखी इनकी पोती है, ग्रैंड डॉटर, और सांदीपनी इनके पुत्र हैं, और मधुमंगल इनका कौन है? मधुमंगल इनका नाती है, ग्रैंडसन। तो वो आती है, कहती है कि अरे वो बाबा थे ना बाबा, वो बड़े बड़े विद्वान और बड़े महान भक्त और संत हैं, आपने उनको भगा दिया ऐसे ही, हो सकता है उनकी कृपा से ये रोना बंद करे। यार बढ़िया बात करी। अभी वही माता है भगवान की सुरक्षा के लिए, उसी महात्मा को उसने भगा दिया था, अब भगवान के रोना बंद कर ले, उनको सेवा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उसी महात्मा को बुलाने को भी तैयार है। एकदम एक्टिविटी कैसी है, कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं, उसी को भगा रहे हैं उसी को बुला रहे हैं, उद्देश्य केवल एक ही है, भगवान की संतुष्टि। ऐसे भक्तों का जीवन ऐसे होता है, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, समझ नहीं सकते हम लोग वैष्णव कैसे कार्य करते हैं, कैसे सोचते हैं, उनकी सोच कैसे चलती है, हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिसके बारे में सोचते हैं वो भी ऐसे अद्भुत हैं, हाँ वो भी ऐसा कार्य करते हैं, वो ऐसे टेढ़े हैं, समझना मुश्किल है उनको। इसलिए कहते हैं कि राधा कुंड जो है वो चौकोनी है, लेकिन श्याम कुंड टेढ़ा है, क्योंकि उनको जिनका कुंड है वो स्वयं टेढ़े खड़े भी टेढ़े रहते हैं वो, हमेशा। तो गोपियां कहती है कि अरे तुमको हमने हृदय में इतना बसा लिया है कि हमारा हृदय भी टेढ़ा हो गया है, अभी हम तुमको भूलना चाहते हैं लेकिन टेढ़े हृदय के अंदर तुम टेढ़े आदमी बैठे हो, उनको निकालना में मुश्किल है, बाहर आप चले गए मथुरा में, हम चाहते हैं कि इनको हृदय से निकाल कर बाहर फेंके कि याद भी ना आ जाए, लेकिन ये हृदय में ऐसे घुस गए हैं, हृदय को भी टेढ़ा कर दिया हमारा पूरा, और ऐसे अटक के बैठे हुए कि निकलते नहीं बाहर। तो ऐसे ही वैष्णव भी है, उनका सोचना भी जो है हमको समझ में नहीं आता है, फिर भी वो तुरंत सखियों को भेजते जाओ बाबा को बुलाओ। तो महात्मा को बुलाते हैं, बड़े आतुर रो रहे हैं वहां पर, जैसे बुलाव आता है भाग के चले आते हैं आंखों में आंसू लेकर, और मैया लाला को लेकर बाहर आती, रोता हुआ बालक रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, सामने भी रो रहा है, लेकिन जैसे ही शिव जी आते हैं उनका चरणों को स्पर्श करके सर पे लगाते हैं तुरंत रोना बंद। उनका नाम गिरा आशीष्वर महादेव। क्या सीखते हैं उनसे हम, आशा कैसी होनी चाहिए जिंदगी में हमारी, ऐसे आशा होनी चाहिए कि भगवान को भी मजबूर होना पड़ेगा दर्शन देने के लिए। ऐसे हम चाहते नहीं कि भगवान हमारे लिए ऐसा कुछ कार्य करे, लेकिन शिव जी बता रहे हैं कि हमारा जीवन ही आशा है। वैसे हमारे जीवन में क्या आशा है, भौतिक जीवन में क्या आशा हो सकती है, मृत्यु निश्चित है, व्हाट इज होप, अपना क्या आशा है हमारे लिए, मरना ही हमको 100%। लेकिन भक्ति की आशा होगी तो जीवन सफल हो सकता है, मृत्यु होने के बावजूद भी सफल हो सकता है, ये शिव जी सिखा रहे हैं। और कैसे भगवान को पुकारना चाहिए ये उसका उदाहरण स्थापित करते हैं, जंगल में बैठ के रो रहे हैं लेकिन लाला के हृदय को उन्होंने आकर्षित कर लिया है, यहां तक कि उन्होंने अपना जो अस्त्र है वो निकाला अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो हम सबको भी जब हम नाम जप करते ना ऐसे भगवान को पुकारना चाहिए, असहाय होकर पुकारना चाहिए, भगवान भी मजबूर हो जाते हैं, जब भगवान का भक्त उनको पुकारते हैं तो स्वयं मजबूर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जब वो पुकारते हैं तो वो उनको रहा नहीं जाता है, ये बिकम्स रेस्टलेस, जहां वहां भगवान पुकारते हैं भगवान का नाम पुकारते हैं वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, पुकारो से आप इतने नजदीक आए हो आप भगवान के, यहां पे तो आपको पुकारना ही चाहिए। आप सबको विनती करता हूं मैं, जब भी कीर्तन होता है जब भी जब करते हो एक एक नाम को मैकेनिकली बोझ समझ के मत पुकारो, अरे 16 माला का बोझ है मुझ पर, आपको क्या मालूम है दीक्षा हुई है, आपको तो कितना अच्छा है आपकी दीक्षा नहीं हुई है, आप तो चार भी कर सकते हो, जो 16 माला करना है भैया 1728 मंत्र बोलना है मुझे, ऐसा बोझ समझ के गाएंगे तो 10,000 करोड़ जन्म में भी उनका दर्शन नहीं होगा आपको। भगवान का नाम बोझ नहीं है, भगवान का नाम जो है वो सबसे बड़ी कीमती भेंट है हमारे लिए, हमारा गहना है वो, अलंकार है हमारे लिए वो, हमारा आभूषण है वो, सम्मान है हमारा, भगवान का नाम जिसको मिलता है उसका परम सम्मान है ये, उनको प्रेम से पुकारना चाहिए। ये नाम जो है वो संबोधन के लिए है, केवल ऐसे बोलने के लिए नहीं है, ये बोलना है, तोता भी बोलता है हम भी बोलते हैं, लेकिन हम नाम पुकारना चाहिए, नाम पुकारने के लिए ही उसका नाम बनाया गया है। नाम जो है वो ध्वनि है, ध्वनि को हम पुकारते हैं, ध्वनि को जब पुकारेंगे तो जिसका ध्वनि है उसको सुनाई पड़ता है, उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। तो ऐसे शिव जी ने पुकारा था इसलिए भगवान ने मजबूर होकर उनको दर्शन दिया। सब योजना थी शुदा मैया की दर्शन नहीं देने की, सब फेल हो गई, जिन्होंने ठुकराया उन्हीं को बुलाने के लिए भेजना पड़ा। हाँ देखो कैसे भगवान लीला करते हैं, हमारे लिए भी आ सकते हैं वो, ये मत समझना कि यशोदा मैया है और शिवजी महाराज यही सब है, ये नाम का महिमा जो है सबको लागू है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, आत्मा स्वरूप है, ममई वांछो जीवलोक के जीव बुद्ध सनातन, परमानेंटली भगवान के अंश हैं हम, स्पिरिचुअल सब्सटेंस है हम, आध्यात्मिक वस्तु है हम, और जो भी आध्यात्मिक वस्तु है उस पर जो परम आध्यात्मिक वस्तु भगवान का नाम जब टच करती है तो वही परिणाम होता है, जो शिवजी पे होता है, जो लक्ष्मी जी पे होता है, यशोदा पे होता है, वो हम पे भी होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम उतने योग्य नहीं फिर भी हम आध्यात्मिक वस्तु है ये निश्चित बात है। आज के दिन आशेश्वर में बहुत भीड़ होती है, लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी प्रकार की आशा आपने भगवान की थी वैसे हमको भी मिले, तभी हम भी उनके लिए ऐसी आशा कर सकते हैं। जो आशा भगवान के नाम को छोड़कर हम भौतिक आनंद के लिए प्राप्त करने का प्रयास करते कि नहीं करते, अरे मुझे पैसा चाहिए, इतना कम पड़ रहा है, थोड़ा और मिलना चाहिए, थोड़ी अच्छी सुंदर बीवी मिलनी चाहिए, बच्चों को SSC एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, मेडिकल में मिलना चाहिए, फॉरेन में जाना चाहिए, कितनी हम लोग आशा रखते हैं, अनंत आशा है हमारे मन में, सारी आशाओं का एक ही फल है बंधन, बार बार आना माता के गर्भ में आके तड़पना, ये एक फल गारंटेड है सबके लिए। लेकिन एक आशा ऐसी है इस सब भव बंधन से आपको मुक्त करा सकती है, और वो है भगवान की आशा। जब हमारे आशाओं का रूपांतर भगवान की आशा में हो जाएगा तो हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, पहले यहीं से ही मुक्त हो जाएंगे। अब जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो भव सागर के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे, इस शक्ति आशा के अंदर। तो क्या कहते हैं रूप गोस्वामी जी, अन्य अभिलाषा शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनर्थम। तो ये भौतिक आशाओं को जो अन्य है भगवान के अलावा है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। शिवजी हमको सिखाते हैं कैसे निरपेक्ष होकर भगवान की इच्छा करनी चाहिए, और कैसे भगवान को प्राप्त करने का तो मंत्र जो है, तरीका जो है, नुस्खा जो है वो बता रहे हैं। इसलिए आशा से जाते हैं हम लोग, उसी आशा को लेकर के हमको भी ऐसी आशा प्राप्त हो जिस आशा के फल स्वरूप भगवान हमें प्राप्त हो। तो आशीष महाराज हमारे लिए बहुत कृपा कर रहे हैं वहां बैठकर। हमारे बरसाने भी शिव जी का बहुत बड़ा सुंदर स्थान है, वो है माहेश्वरी सर। हाँ, आप लोग गए उधर कोई? उसका और एक नाम है बिहारी कुंड, जो दोहनी कुंड के पास में है। वहां पर शिव जी, यहाँ पर ऐसा है ना कि शिव जी के दरबार में यहाँ पर सब लोग पुकारने आते हैं, इंद्र आते हैं, चंद्र आते हैं, वायु, वरुण, जितने भी देवताएं हैं, स्वयं कृष्ण भी आते हैं, महादेव भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, सब लोग उनको पुकारने को आते हैं। यहाँ पर टेर लगाते हैं, आवाज देते हैं महारानी को, उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के लिए, उनका एक कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए तड़पते हैं सब लोग यहाँ पर आके। तो शंकर जी भी आए थे, साथ में पार्वती जी भी आई थी, और शंकर जी सखी बने और चलने लगे टेर लगाने के लिए। उनका श्रृंगार कुछ ठीक नहीं था तो पार्वती जी हंस पड़ी, अरे आपको क्या कैसा पता है कि नायिका एक श्रृंगार कैसा करती हैं, आओ मैं आपको सजाती हूँ। तो पार्वती जी ने उनको श्रृंगार किया है उस कुंड के पास, 16 श्रृंगार करके चुनरी उड़ा के लहंगा फरिया पहना के उनको भेजा, भी जाओ और भी टेर लगाओ। तो माहेश्वर जी वहाँ से गए हैं और मान मंदिर के नीचे आकर उन्होंने टेर लगाई ठाकुर जी को, तो वो नाम पड़ गया माहेश्वरी सर। यहाँ पर महेश स्वयं जाकर गोपी बनकर उन्होंने राधा रानी को पुकारा था उनके कृपा की याचना करने के लिए। ये शंकर भगवान इतने इतने श्रेष्ठ भक्त है भगवान के। हम सब लोग अपने पत्नी को गिफ्ट देते हैं ना हमेशा, कुछ कुछ लाके देते हैं बर्थडे पे, इस पे उस पे। इन्होंने राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत्र को लिखा, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे। बहुत सुंदर ये भजन है जो ब्रजवासी लोग नित्य अपने साधना में, नित्य पाठ में उसको गाते हैं। उसका ध्रुपद क्या है, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कब करोगी कृपा राधा रानी, कब आपके कृपा का कटाक्ष मुझ पर गिरेगा। तो पूरा स्तोत्र उन्होंने लिखा है और अपने पत्नी को भेंट दिया उन्होंने, क्या सुंदर भेंट है देखो। हाँ, जो जीवन का परम लक्ष्य है, जो हम चाहते हैं वो कैसे प्राप्त करना है, वो श्लोक बनाकर, स्रोत्र बनाकर उन्होंने अपने पत्नी को भेंट दिया, और उसी को पार्वती जी ने भी पढ़ा है, उसी को प्रार्थना के रूप में गाया भी है। ब्रज में सब ब्रजवासी लोग उसको बाय हार्ट है। श्री जी के मंदिर में जाएंगे तो वो राइट साइड में उसको लिखा भी गया है। श्री जी का बहुत सुंदर वर्णन है उसके अंदर, बहुत सुंदर वर्णन है उसको, सारे गुणों का, अधिक से अधिक गुणों का उसमें वर्णन किया गया, कैसे श्री जी कैसी हैं। तो राधा कुंड के पास जाएंगे, वहां पर भी श्री जी का निवास है राधा कुंड के रूप में, जल के रूप में वहां पर शिव जी विराजमान है कुंडेश्वर महादेव के रूप में। सबसे पहले कुंडेश्वर महादेव को दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर राधा कुंड के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के रक्षा करने वाले हैं, कृपा देने वाले हैं। इस तरह से ब्रज में शंकर जी का विशेष लीला है, वो सब पर कृपा करते हैं। और ब्रज के बाहर भी इनके अंतर लीला, जैसे मैं आपको बताया कपोतेश्वर महादेव, बिलेश्वर महादेव, और एक बड़े महादेव हैं भुवनेश्वर महादेव। हाँ, सुना है ना आपने, ट्रेन रुकती है कि नहीं वहाँ पर भुवनेश्वर पे, सुंदर लीला है उसकी भी। एक थे पौंड्रक नाम के, विशेष व्यक्ति थे, बड़े फनी व्यक्ति थे वो। हाँ, तो अपने आप को भगवान समझते थे, और भगवान मतलब एक बहुत डिप्रेशन में थे एक बार वो, तो उनको जरा बहलाने के लिए सब सखाओं ने उनके आके उनको बोला आप भगवान हो, आप भगवान हो, तो वो सच मान गए। उन्होंने दो भुजा भी जोड़ दी आपके हाथ में अपने शरीर को, और शंख चक्र पद्म गदा भी धारण कर लिया, और सबने उनको बोले ना राज के दरबार में होते हैं भाट, भाट लोग होते हैं, उनका काम ही रहता है कि भगवान जो राजा होता है उसको गुणगान गाते रहने का, उसके ऊपर कविता बनाने का और गाते रहने का उसको, ताकि राजा जो है अपना जो उसका सीन है, जो भी कष्ट उसको हुआ है, जो भी तकलीफ होती है, उससे उसको जरा अच्छा लगता रहे, इनकरेजमेंट मिलता रहे उसको। तो इन्होंने भी सब भाट लोगों ने मिलकर कविता बनाया उसको, भगवान 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 भर के उसको इतना चढ़ाया कि वो बिल्कुल ऐसा कन्विंस हो गया कि मैं ही भगवान हूँ। और फिर उसको समझ में आया कि द्वारका में भी कोई भगवान है, बड़ा नकली भगवान है वो, संदेश भेजता है उसको, बड़ा लेटर भेजता है, भागवत में दिया लेटर वो, कि आप नकली भगवान हो, मेरा चक्र धारण करके आप भगवान बने हो, अगर खैरियत चाहते हो तो आके चुपचाप वो चक्र लौटा दो। बड़ा फनी लेटर है वो, आप पढ़ो भागवत में उसको, मूर्ख व्यक्ति कैसे सोच सकता है, इसका एक ये प्रूफ है, ये मूर्ख व्यक्ति किसको कह सकते हैं, उसका भी एक प्रूफ है वो। बड़ा खत लिखते हैं भगवान को ऐसा, मतलब एज इफ ही इज गॉड हिमसेल्फ एंड एड्रेसिंग टू नकली गॉड। जैसे आप लोग हंसे ना, वैसे भगवान के दरबार में सब लोग बड़े पेट भर के हंस लेते हैं, बहुत जोरदार हंसते हैं, वाह क्या बात है, भगवान भी बहुत खूब हंसते हैं उसके अंदर। बोले कोई बात नहीं, उसको रिपोर्ट भेजते हैं वापस रिटर्न कि हम आपका आदेश स्वीकार करते हैं और हम चक्र को लौटाने के लिए आ ही रहे हैं आपको मिलने के लिए। तो भगवान रथ लेकर आते हैं, सेना लेकर आते हैं, वो भी सेना लेकर आता है युद्ध करने के लिए। तो उसको देख के भगवान रथ में बैठे हैं, उसको देख के भगवान बहुत रथ रणांगण में भी बहुत हंसते हैं उसको देख के, वो ऐसा चक्र धारण करके नीला रंग लगा के बहुत बढ़िया सा इतना हंसते हैं। युद्ध में तो हमको वी आर एंग्री ना, फाइट करने के मूड में रहते हैं, तो भगवान हंस रहे हैं जोर जोर से वहां पर, और कहते हैं कि हे पौंड्रक, मैं जानता हूं तू ही भगवान है और तुम मुझे चक्र को मांग रहे हो कि जो मैंने आपसे लिया है, लो इसको ले लो, स्वीकार करो, मैं आपकी आज्ञा को पूरी करता हूं। और चक्र को छोड़ते हैं, चक्र जाकर पौंड्रक की गर्दन काट के वापस आता है। और ये चक्र, ये जो पौंड्रक था, ये काशीराज का मित्र था, तो काशीराज भी ऐसे ही भाव में था कि हमारा मित्र जो है वो भगवान है और ये नकली भगवान है, तो वो भी युद्ध करने के लिए आता है। तो चक्र जो है वो काशीराज का सर भी काट देता है, और साथ साथ में चक्र जो है काशीराज का सर काट के काशी में दुब फेंक देता है उसको। सब लोग काशीराज और पौंड्रक जो है कृष्ण के दुश्मन है, तो जैसे राजा वैसे प्रजा, तो प्रजा भी कृष्ण को दुश्मन मानती है। तो चक्र जानबूझ के पौंड्रक का सर काट देते हैं, लेकिन काशीराज का सर काट के काशी में फेंक देते हैं। जैसा मुकुट पहना हुआ, अलंकार लगाया हुआ, कुंडल पहना हुआ, सुंदर जो शीश है वैसा उड़ते उड़ते काशी में आके गिर जाता है। सब नागरिक भाग भाग के आते हैं, वाह वाह शत्रु का मृत्यु हो गया, धर्म मृत्यु हो गया, बहुत खुशी से भाग के आते हैं। पास जाकर देखते हैं, देखते हैं तो काशीराज का ही सर है वो, अपने राजा का सर। उतने में चक्र वहां पहुंचता है और पूरी काशी को भस्म कर देता है कंप्लीटली। तो फिर काशीराज की मृत्यु के बाद उसका लड़का जो है सुदक्षिण, बड़ा गुस्सा आता है उसको, ये कृष्ण ने मेरे पिताजी का वध किया, पिताजी के मित्र का वध किया, अपमान किया हमारा। तो यज्ञ में बैठता है, शिवजी की पूजा करता है, तो शिवजी उसको कहते हैं यज्ञ करो, जो कृष्ण को मारना है यज्ञ करो और राक्षस को उत्पन्न करो उसमें से, और फिर कृष्ण में भेज दो। वो यज्ञ करता है, फिर यज्ञ से वो राक्षस उत्पन्न होता है, उसको आदेश देता है जाओ द्वारका नगरी में जाकर द्वारकाधीश का वध करो। फिर चक्र आता है, उसको मार देता है। तो इस समय शिवजी ने वादा किया होता है, जब तुम करोगे मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए। तो वो चक्र जो है राक्षस को मार के शिवजी के पीछे भागने लगता है। शिवजी चक्र के भय से दूर दूर भागते हैं, भागते 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 जाते हैं, फिर द्वारका में पहुंच जाते हैं और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत दुष्ट हूँ, मैंने राक्षस का साथ दिया है, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा चाहता हूँ, आपके शरण चाहता हूँ। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं शिव जी की ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा संग जो है वो बहुत गलत है, ये राक्षस प्रेत भूत जो है मेरे साथ में रहते हैं, उनके संग से मेरी मति भ्रष्ट हो जाती है, अब मैं आपका संग चाहता हूँ। तो भगवान की नम्रता को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सब लीला है, ये मत समझना कि वो वास्तव में संग करके उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। ये भगवान जो है अपने धाम को प्रकट करने के लिए लीला करते रहते हैं और अपने भक्तों को इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न होकर कहते हैं कि अभी आप मेरे जो दिव्य धाम है जगन्नाथपुरी शंख क्षेत्र, तो मेरा चिरंतन धाम है, उसके किनारे पे आपका धाम होगा एकाम्रवन, जहां पर आप भुवनेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। और मैं आपको वरदान देता हूं कि मेरे धाम में आने के पहले लोग आपके धाम में आएंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपका प्रसाद पाएंगे और फिर जगन्नाथपुरी में प्रवेश करेंगे शंख क्षेत्र में। इसलिए और भी वरदान देते कि मुझे लगाया भोग जो है वो आपको दिया जाएगा, इसलिए शंकर भगवान का प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद सब लोग प्राप्त करके आपके मेरे धाम में प्रवेश करेंगे। और भुवनेश्वर का बड़ा सुंदर वर्णन है स्कंद पुराण में, ठीक है, सुंदर वर्णन दिया है। तो वो है भुवनेश्वर महादेव, भगवान की वहां पर भी सेवा कर रहे हैं। बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं, कितना टाइम है अपने पास, टाइम तो हो गया है, यानी वे एक छोटी सी कथा बताते हैं इसके बाद में। ये शिवजी महाराज इतने इतने विरक्त हैं, विवाह तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी भी उनके हाथ पेड़ के नीचे रहती है, पार्वती देवी हिमालय की पत्नी है वो, अन्नपूर्णा जी हैं। तो एक बार कहते हैं कि महाराज जी आप तो हमको ऐसे ही बिठा के रखे हैं, कोई घर नहीं कुछ नहीं, पेड़ के नीचे बिठा के रखा है, एक घर तो बनाओ कम से कम। तो ऐसा नहीं कि शिवजी के पास में कोई शक्ति नहीं है, झट से अपनी शक्ति के द्वारा आकाश में ऐसा देश बना दे, देश एक घर के रूप में। हम लोग क्या करते हैं, वन रूम किचन टू रूम किचन, सब पसीना बहा के 50 साल तक वो लोन नहीं पूरा हो रहा है, केवल इच्छा से आकाश के अंदर ऐसा शहर बड़ा देश सब बना देते हैं, हजारों कमरे है उसके अंदर, लक्ष लक्ष दासियां उसके अंदर, सब सोने के क्या कहते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर, जो औजार जो भी चाहिए घर में, बर्तन है जो भी कुछ है, आसन है, बढ़िया बढ़िया बिस्तर, जो भी एकदम विचार नहीं कर सकते हम लोग, कुबेर भी शर्मिंदा हो जाएगा। ऐसा सुंदर प्रसाद बनाते हैं, महल बनाते हैं आकाश के अंदर और गृह प्रवेश करते हैं शिव जी और पार्वती जी बड़े धूमधाम से। हाँ, और बृहस्पति को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, सबको आमंत्रण देते हैं। पार्वती जी अन्नपूर्णा है ना, वो तो सबसे पहले लोगों को भोजन कराना चाहती, बड़ा आयोजन होता है उनके घर पे, सब ऋषि मुनि सप्तऋषि सारे ऋषि उनके अनुयायी और देवताएं और बृहस्पति देवताओं के गुरु सब लोग पहुंच जाते हैं, बड़ा यज्ञ होता है उसके अंदर। और यज्ञ के बाद में गृहस्थ तो क्या करते हैं, दान में बैठते हैं ना, सबको दान देते, दक्षिणा देते हैं, सब आते हैं उनको कुछ कुछ मांगते हैं, सब दे देते हैं। एक साधु आता है बोलता है ये घर ही हमको दे दो, तथास्तु, दे देते हैं, फिर पेड़ के नीचे आते हैं, ऐसे विरक्त है वो। हाँ, एक दिन भी नहीं हुआ, अरे एक भोजन पाया बस खत्म, वापस पेड़ के नीचे पार्वती भी आ जाती है, ठीक है भाई क्या करें, सरेंडर्ड है पूरी, वो समर्पित है पूरी तरह से अपने पति से। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि जैसे पति का भाव हो वैसे पत्नी को उसको भाव को स्वीकार करना चाहिए, वही सही पत्नी है। जैसा पति का भाव हो, जैसे पति की चेतना हो, जिस प्रकार से वो भगवान के भक्ति में रहता हो वही भाव। समझो पत्नी बहुत अमीर घर से है और पति थोड़े गरीब घर से है, तो तुरंत पत्नी को पति के जैसे भाव को अपनाना चाहिए। कैसा बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, देवा होते हुए कर्दम मुनि, देवा होते स्वयं वो मनु की कन्या थी, बड़ी राजा की कन्या थी वो, और कर्दम मुनि जंगल में रहने वाले फकीर थे एकदम, भगवान के परम भक्त थे लेकिन उनके पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं थी, एक राजा भी भक्त था कर्दम, सॉरी स्वयं वो मनु। तो राजा होते हुए भी अपनी कन्या का उसने विवाह कर्दम मुनि से किया, इसके बाद एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन राजा को जानकारी थी और ज्ञान था कि मेरे बेटे का अगर कल्याण करना है, जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार करना है तो एक साधु भी होना चाहिए। तो ये जो जिसने कदम कभी जमीन पर रखा नहीं था, वो लड़की जंगल में जाती है गुफा में रहने के लिए और कई हजार वर्ष उसकी सेवा करती है, उपवास, नींद नहीं मिल रही है, वो धप ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई खुशी वैसे नहीं कि जो विवाह के बाद में लोग सोचते हैं मिलना चाहिए, कुछ नहीं है, प्रसन्न होकर उनकी सेवा करते हैं। और इतनी सेवा करने के बाद में कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, एक साथ 9 कन्याओं को जन्म देते हैं और उसके बाद में स्वयं भगवान कपिल देव को जन्म देते हैं। क्योंकि उन्होंने पति का जो भाव था उसको स्वीकार करके उनको प्रसन्न किया, इसलिए पूरा फल जो है उन्होंने उनको दिया और स्वयं भगवान उनके कोख में जन्म लिए। तो इस तरह से शिवजी महाराज जो है बड़े विरक्त हैं, कोई उनको अभिलाषा नहीं है। सब सिद्धियां शक्तियां होने पर भी फकीर बंद कर देते हैं, ये भी उनके विशेषता है विरक्ति, और हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। कभी भी मतलब विरक्त क्यों है वो, क्योंकि उनका पॉजिटिव एंगेजमेंट जो है भगवान के ध्यान में वो इतना गहरा है कि बाकी किसी चीज में उनको आसक्ति नहीं है, इसलिए नेचुरली विरक्त हैं वो स्वभाव से विरक्त हैं। तो ऐसे सुंदर बाकी कथा है कल बताएंगे आपको, सुंदर हमारे शिवजी भगवान का आज पवित्र दिवस है, शिव चतुर्दशी आज महाशिवरात्रि के रूप में सब मनाते हैं। सब ब्रजवासी लोग शिव जी को बहुत मानते हैं, आज सब जगह पर बहुत भीड़ लगती है, कोपेश्वर भूतेश्वर कामेश्वर चक्रेश्वर नंदीश्वर सब जगह पे, और कई ऐसे ब्रजवासियों को जानता हूँ वो नित्य नियम से रोज कोपेश्वर का दर्शन करते हैं। ये नहीं कि कुछ मांगने के लिए कि पैसा चाहिए कुछ चाहिए, लेकिन वो बड़ी श्रद्धा रखते हैं शिव जी के ऊपर, क्योंकि तो शिव जी भी एक बड़े श्रेष्ठ ब्रजवासी हैं, और केवल गिने चुने देवताओं को ब्रज में निवास दिया गया है, जैसे कि गणेश जी को कामेवन में निवास दिया गया है, हाँ ब्रह्मा जी को यहाँ पर निवास दिया गया ब्रह्माचल के रूप में, और एक है शिव जी और पार्वती जी। शिव जी ने अपने पत्नी को कृष्ण का मंत्र दिया था, वो उन्होंने जप करके कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया, कृष्ण भगवान ने उनको राधा मंत्र दिया और त्रैमासिक व्रत का आदेश दिया। फिर पार्वती जी ने और शिव जी ने मिलकर त्रैमासिक व्रत किया है, उसका सुंदर वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। उस त्रैमासिक व्रत के फल स्वरूप राधा और कृष्ण दोनों ने शिव पार्वती को दर्शन दिया। इस बीच में शिव जी ने राधा कृपा कटाक्ष बनाकर पार्वती को दिया, और सबके फल के रूप में राधा रानी का दर्शन कृष्ण भगवान के साथ में शिव जी और पार्वती को प्राप्त हुआ है। उन्होंने केवल एक ही चीज मांगी है कि हमको ब्रज में निवास दो, और राधा रानी के परम कृपा से शिव जी और पार्वती जी दोनों चिरंतन ब्रज में निवास करते हैं, अन्य कोई देवताओं को ऐसा लाभ नहीं मिला है। इसलिए ये सच्चे रूप के ब्रजवासी ब्रज के भाव में एकदम घुल मिल गए हैं। उनकी जो बाहर की लीला है ब्रज के बाहर की, तो वो तो बिजनेस या अपना कर्तव्य भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो उनका ड्यूटी है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रजवासी बनकर रहते हैं, सबको प्रेरणा देते हैं, सबको शिक्षा देते हैं कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कैसे जीवन को उनकी सेवा में अर्पण करना चाहिए, कैसे भगवान को पुकारना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे भगवान की सेवा के लिए विरक्त रहना चाहिए, हर चीज में उनका उदाहरण है। इसलिए आज के दिन हम परम वैष्णव शिव जी को हृदय से प्रणाम करते हैं और उनसे कृपा याचना करते हैं कि उनकी कृपा हम पर रहे, क्योंकि वो हमेशा भगवान के भक्तों पर बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया के सब लोग उनके लिए मांगने के लिए उनके पास आते हैं ना, उनका अभिषेक करते हैं कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं उनके पास, उसमें उनको मजा नहीं आता है, लेकिन जैसे भगवान के भक्त आते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है, क्योंकि भगवान के भक्त जो है कुछ उनसे मांगते नहीं है, केवल भगवान की भक्ति मांगते हैं, जो देने के लिए वो बहुत लालयित है बहुत उत्सुक है वो, इसलिए वो भगवान के भक्तों को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए आप लोग उनको दंडवत प्रणाम करना हृदय से और उनसे भक्ति की याचना करना भगवान की भक्ति की, और वो जरूर आपको भगवान की भक्ति देंगे, उनके अंदर वो शक्ति है। बोलो शंकर भगवान की, महाशिवरात्रि महोत्सव की, श्री कृष्ण भगवान की, राधा श्याम सुंदर जी की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौ प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।